अकाश्रया जुहा पुत्रेति तन्मयतया सर्वोभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानुसूति तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तं माम चरणं स्थिते। ठंड लग रही है, बंद नहीं पास लो कर ठीक। हम लोग दो तीन जगहों में प्रवचन और कीर्तन किया, उसमें जीव का कल्याण कैसे होगा इसके संबंध में हम लोगों ने बात की। हम लोग ठीक से समझ नहीं पाते हैं कि हमारा कल्याण कैसे होगा, अपने जीवन में सुखी और शांति हमको कैसे मिल सकती है। हम लोग बुरी बातों को ही अच्छा समझ लेते हैं, अच्छी बातों को बुरी समझ लेते हैं। कुछ नए आदमी हैं इसलिए थोड़ा सा नीचे से चल रहा हूं। परीक्षित महाराज जी को मैं तो सोचता था जैसे कुछ आगे की बात चलूंगा, थोड़े पहले देकर के कुछ ही आगे चलूंगा। परीक्षित महाराज जी को एक छोटे से बच्चे ने श्राप दे डाला। श्राप के दिन यह सांप जो पिताजी के गले में लगाया वही सांप तुम्हें काटेगा, और यह बात किसी तरह से झूठी नहीं हो सकती। वो परीक्षित महाराज जी को जब यह पता लगा बड़े प्रसन्न हुए, उन्होंने हमें जला करके खाक नहीं कर दिया, हमारी भक्ति नष्ट नहीं, ये तो हमें भजन करने का सुयोग दे दिया। मैं अपने आप घर से निकल करके भजन नहीं करता, या घर में रह करके मैं बहुत अच्छा हो गया, अब मैं घर बार सब छोड़ करके अब गंगा नदी के किनारे जा रहा हूं। 7 दिन तो मुझे मौका मिला, सोच रहे मुझे क्या करना चाहिए। इतने में सुखदेव गोस्वामी जी आए। सुखदेव गोस्वामी से उन्होंने 2 प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न, मुझे अभी मरना है, जो लोग अभी तुरंत अभी बेड पर बैठे हैं मरने के लिए तुरंत मरेंगे 1-2-10 मिनट, उनको क्या करना चाहिए, उनका कर्तव्य क्या है। और जो लोग आज नहीं कल नहीं परसों नहीं बरसों मरेंगे जरूर, जो जन्म लिया है वो जरूर मरेंगे, हमको भी जरूर मरना है, आज मरे कल मरे परसों मरे, उन लोगों के लिए क्या करते हैं जिनके लिए समय नहीं है, अभी तुरंत मरना है, संसार छोड़ देना है, उनके लिए क्या जरूरत, क्या करना है। और जो लोग अभी कुछ समय है, कल परसों तरसों बरसों, कोई गारंटी नहीं है कब तक जिएंगे, उनको गारंटी थी कि 7 दिन जरूर जीवित रहेंगे ही, हम लोग को तो कोई गारंटी नहीं, क्या करें। उन्होंने कहा एतत् निर्विद्यमानानां इच्छताम् अकुतो भयम् योगी नाम निर्णितम् हरे नामानुकृतम्। जो भी तुरंत मरने वाला है उसको तत्व ज्ञान इत्यादि नहीं दिया जा सकता है, वो कुछ भी नहीं कर सकता है, अभी तुरंत मर रहा है, तथ्य निकल रही है, हा हा कर रहा है, मरा 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 कर रहा है, उसको क्या करेंगे? उसे क्या कहेंगे? जैसे तुम योग इस समय ध्यान लगाओ, ध्यान लगाएगा, यज्ञ करो, यज्ञ कर सकेगा? उठ करके तो बैठ ही नहीं सकता, मर रहा है, क्या करेगा वो? दान पुण्य करने का भी समय नहीं, क्या करेगा वो? कोई भी काम नहीं कर सकता, नाम करो नाम भी नहीं कर सकता, बस उसको नाम कान में डाल दो, राम राम कृष्ण कृष्ण कह दो, उसका कल्याण अवश्यंभावी कल्याण। दूसरा कोई समय नहीं है, मन को एकाग्र करके चित्त को समाधिस्थ करो, ये कभी संभव? अच्छा अर्चन तुम करो, होगा? अजय तुम हरिद्वार या वृंदावन में जाओ, जाएगा? कुछ नहीं कर। उसके लिए सहज सरल तरीका हमारे सनातन धर्म में है। यदि नाम कर सकता है तो नाम कराओ जी, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम। नहीं कर सकता? अच्छा कृष्ण कृष्ण ये टेढ़ा है, अच्छा तो राम राम करो, उसका कल्याण। एक तुलसी का पत्ता ले लो, उसके सिर में गंगा जल मिला करके उसको दे दो बस, और इसे सहज तरीका कुछ नहीं। जीवन भर पाप भी किया है वो ठीक, और जिसको समय है वो क्या करे? 7 दिन का अब भागवत सुनो, 7 दिन बैठ। कैसे नाम करना चाहिए, कैसे नाम करने से क्या फल होता है, भक्ति क्या चीज है, किस तरीके से कौन भक्त ने भगवान को भक्ति करके पाया, इसका इतिहास सुनो। कृष्ण में चित्त लगाओ, कैसे लगाएं? उनकी लीलाओं का स्मरण, कैसे? 10 स्कंद में, कैसे जन्म हुआ, कैसे गोकुल में गए, कैसे यशोदा मैया ने उनको बांधा प्रेम के साथ में, कैसे पूतना इत्यादि का उद्धार किया, वृंदावन में आए, अगासुर बकासुर इत्यादि का उद्धार किया, रास किया गोपियों के साथ में, द्वारका की लीलाएं की, इस सब का श्रवण करके जब चित्त में स्थिर हो जाएगा तो जहां कहीं रहो इसी चीजों का स्मरण करते रहो, और हरे कृष्ण हरे कृष्ण, चित्त को स्थिर हो जाएगा। इस तरह से इच्छताम अकुतो भयम, जो तो किसी चीज की आकांक्षा है तभी, संसार वासना है धन जन पुत्र परिवार की तभी, जिनकी ख्वाहिशें सब दूर हो गई हैं, इच्छाएं सब दूर हो गई हैं, उनके लिए भी, और जिनको भक्ति हो गई है उनको भी, जिनको मुक्ति की लालसा है वो भी, किसी भी चीज में किसी भी स्थिति में कोई भी है, सबके लिए यह हरि नाम संकीर्तन कलयुग का ये प्रधान उपाय है, उसको तरने के लिए सहज रूप। यदि महाअत्याचारी महाव्यभिचारी छली कपटी धूर्त भी हो, यहां तक कि ब्रह्मघाती इत्यादि भी हो, अंत समय में यदि नाम किसी प्रकार से निकल गया सुन गया कान, उनका कल्याण हो जाता है। और यदि समय है तो सुनो, भक्ति किसको कहते हैं, नाम क्या तत्व है, ये भगवत में लिखा है, कैसे अपने चित्त को भगवान में रमा सकते हैं। भगवत में ये भी बतलाया सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं, यदि तुमने संसार का सब काम ठीक किया, माता पिता की सेवा, गुरुजनों की सेवा, सच बोलना, परोपकार करो, स्त्री के प्रति अपना धर्म अच्छी तरह से निभाओ, पति के प्रति निभाओ, सास ससुर के प्रति निभाओ, माता पिता के प्रति निभाओ, ये सब अच्छे सब कर्म है, दूसरों को दान दो, दुख में सबकी सहायता करो, ये सब पुण्यजनक कार्य है। इन कर्मों के करने पर भी शांति और सुख नहीं मिलेगा भाई, ये गारंटी रखो, यदि कृष्ण का भजन नहीं, यदि कल्याण चाहते हो, तो तुम जो काम सत्कर्म कर रहे हो करते रहो, किंतु भगवान का नाम स्मरण करो, भगवान के चरणों में भक्ति हो, अनुराग हो, तब तो सहज रूप में भव सागर को चुटकी बजाते हुए पार कर जाए। और यदि नहीं किया, संसार के समस्त अच्छे अच्छे कर्मों को कर लिया किंतु भगवान का भजन नहीं किया, तो नरक जाना पड़ेगा जितने भी अच्छा कर्म को। क्यों जाना पड़ेगा, इसको मैं एक साधारण उदाहरण देकर के समझाता हूं। रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण के सहित वन में गए। एक दिन घूमते घामते एक सुनसान जंगल में पहुंचे, अगस्त ऋषि का आश्रम के पास में। देखा जी, इसे जंगल बड़ा सुहावना, तरह तरह की सुंदर सुंदर चीजें हैं, माने फूल इत्यादि हैं, सुंदर एक सरोवर है, घाट बंधे हुए हैं, कमल के फूल खिल रहे हैं, भौरे मड़रा रहे हैं, कोयल भी कुहक रही है, सभी चीजें हैं। उन्होंने देखा, भाई ये क्या बात है। उनको देखते ही अगस्त ऋषि वहां पर पहुंचे। अगस्त ऋषि से पूछा, जी भाई ये बड़ा सुहावना आश्रम सा है, यहां पर कुटी भी किसी की दिखती है, मालूम पड़ता है जी ये किसी साधु भजन करने वाले भक्त का ये स्थान है, किंतु यहां पर कोई दिखता नहीं है, क्या बात। ये देखिए, आपको इसका रहस्य बतलाता हूं। ये सुंदर सरोवर देखते हैं ना, तो यहां से एक स्वर्ग से व्यक्ति आता है और करता है क्या, वो क्या करता है, वो मर गया तो गया स्वर्ग में, उसकी लाश वहीं पर पड़ी है, अभी भी उसकी लाश है, और वो व्यक्ति वहां से उतरता है और उतर करके अपने शरीर का मांस काट करके और खाता है, और फिर वो मांस पूरा हो जाता है, अपने लाश का ही वो मांस खाता है। तो वो स्वर्ग गया, इधर फिर अपना मांस खाने के लिए आता है, ये तो बड़ी विचित्र बात। अगस्त यहां ऐसे ही बात है, क्यों ऐसा हुआ। तो उन्होंने जगत में जितने उपकार हैं उन्होंने किए दूसरे लोगों के, बाल बच्चों को भी लेकर के वो अच्छी तरह से रहा, बहुत पुण्य आत्मा था, इसलिए पूर्व कर्मों पुण्य कर्मों के संचय से करने से वो तो स्वर्ग में तो गया, किंतु उसने कभी भी अपनी माता पिता की सेवा नहीं की, जिन माता पिता ने जन्म दिया, कष्ट से उनको पाला पोसा, और उनकी सेवा उसने नहीं की। इसलिए वह स्वर्ग में जाने पर भी उसके लिए भोजन कुछ नहीं, इसलिए उस स्वर्ग में जाने पर भी उसको भूख लगती है तो अपना मांस खाने के लिए इसी सरोवर के तट पर उसको आना पड़ता है। ये पहले ये बड़ा भारी नरेश था राजा था, जैसे इसका कल्याण कैसे होगा। अब जब आप आ गए तो कल्याण क्या बाकी रहा। ये एक सोने का कंकड़ है, उसने आकर के हमारे लिए तपस्या की, जगत ऋषि से भेंट हो जाए, तो जब मोहत स्मरण करने लगा तो मैं उसे मिल गया, महाराज हमारा उद्धार कीजिए। मैंने बहुत विचार करके देखा, बहुत विचार कर सोचा, जैसे अब रामचंद्र जी आने वाले हैं, इसी के हाथ से इनका कल्याण कराऊंगा, जब हमारे शरण में आया। साधुओं के शरण में जाने से वो भगवान को भी मना लेते हैं और रास्ता निकाल देते हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक सोने का कंकड़ था, वो राजा से ले लिया, स्वर्ग में वो रहते हैं ना, तो सोने का कंकड़ था, दे दिया, उन्होंने दान ही में उनको दे दिया। उन्होंने कहा कि इसका मैं यदि लूंगा तो हमको तो महापाप का भागी होना पड़ेगा, इसलिए मैं तो नहीं ले सकता, अब मैं क्या करूं। उन्होंने कहा, जैसे ये रामचंद्र जी अब आए हैं, आप आए हैं, आपको मैं इसको दान देता, आपके नाम के स्मरण से ही पाप दूर हो जाते हैं, अब आप इसका कल्याण कर दीजिए। आप जगत के माता पिता हैं, इसने अपने माता पिता की सेवा नहीं की, किंतु आप माता पिता के माता पिता के माता पिता के माता पिता के मूल, इसलिए आपकी सेवा करने से उसका वह जीवा भाव था वो पूरा हो जाएगा और वो मुक्त होकर के चला जाएगा, स्वर्ग में भी नहीं रहेगा, आपकी कृपा दृष्टि हो जाएगी। बस रामचंद्र जी वो कंकड़ ले लिए, लेने के साथ ही साथ में देखा जी वो राजा जो इंद्रपुरी में गया था वहां से आया, आज उसने अपना मांस नहीं खाया और वो रामचंद्र जी के चरणों में गिर गया और उनकी धूलि स्पर्श कर ली। जिस धूलि के स्पर्श करने से गौतम अहिल्या भी तर गई ना, तो ये क्यों नहीं तर जाएगा, वो तो पाषाण हो गई थी पत्थर और ये भी तो मनुष्य था, स्वर्ग से आया था, बस साथ ही साथ में उद्धार हो गया। इसलिए कहते हैं अकामो सर्व कामो मोक्ष काम उदार भी तीव्रेन भक्ति जोगेन जजते। जिसको किसी प्रकार की कामना हो, कोई कामना नहीं हो, मुक्ति की अभिलाषा हो, यहां तक कि भक्ति की अभिलाषा हो, और जो भक्त है उसको प्रेम की अभिलाषा हो, किसी भी स्थिति में समस्त मनुष्यों का यह परम कर्तव्य है कि भगवान का स्मरण करें, जीव का निर्वाह के लिए अपना कर्तव्य पूर्ण करें, वो भी सत्य और दृढ़ निष्ठा के साथ, बेईमानी करके नहीं, चोरी करके भगवान की सेवा नहीं करना है, वो मुक्त पुरुषों का काम है, बेईमानी करके नहीं। आजकल क्या होता है, गवर्नमेंट के ऑफिसों में अधिकांश काम कैसे होते हैं, लापरवाही के साथ में, पैसा तो हमको मिल ही जाएगा, ये सब कौन हटाएगा, मनमानी कुछ कर लिया नहीं कर लिया, प्रभु देखता है कि नहीं वो देखता है, इसलिए अपना काम पूरा करेंगे, अपना कर्तव्य पूरा करेंगे, भगवान का भी भजन करेंगे। ये साधारण लोगों के लिए, हम लोगों के कर्तव्य में माता पिता इत्यादि का जो बतलाया, ये भी पूरे रूप में जिन्हें माता ने जन्म दिया पिता ने जन्म दिया उसके प्रति तो हमारा कर्तव्य है, गुरुजनों के प्रति, देवताओं के प्रति, सबके प्रति हमारा ऋण है। जिसे शिक्षा मिली, जिस समाज में हम पले पोसे, जिसके अधिकार में रह करके हम रहे, वो राजा को भी बतलाया गया, गुरु को भी बतलाया गया, पुरोहित को भी बतलाया गया, जिससे हमारा कल्याण है उनके प्रति हमारा कर्तव्य है। और जब जिसमें भगवान की सेवा में संपूर्ण रूप से चला जाता है तो उसका कोई भी कर्तव्य नहीं, तब तो वो भगवान की सेवा में पहुंच जाता है, सभी ऋण उससे भी मुक्त हो जाता है। किंतु वो है कैसे व्यक्ति के लिए, सुखदेव गोस्वामी के, नारद जी हैं और सब व्यक्ति के लिए। इसलिए जब तक हम संसार में हैं तब तक संसार का पूरा इंजाम भी देंगे, भगवान का भजन करेंगे, संतों का संग करेंगे, क्रमशः भक्ति में हम लोग उठेंगे। इसलिए इस तरह से साधारण रूप में ये भगवान के प्रति भगवान का नाम करना, कीर्तन करना, उनके चरणों में कुछ ले आए पुष्प इत्यादि अर्पण कर देना, ये साधारण सबसे भक्ति है। किंतु उत्तमा भक्ति नहीं है, हम उत्तमा भक्ति की ही बात आप लोगों को बतला रहे हैं दो तीन दिन से जो हमारा प्रसंग चल रहा है, अब उस पर हम आते हैं। साधारण के लिए यही है, भगवान का नाम करे, संसार का कर्तव्य जो है उसको पूरा करते हुए करे, किंतु उत्तमा भक्ति कुछ और है। गीता में कहा गया चतुर्विधा भजन्ते मां सुकृतनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी च ज्ञानी च भक्त तेषां नित्य जो नहीं तेषां ज्ञानी माने उसमें सबसे श्रेष्ठ है। नहीं भाई उसके साथ साथ वासुदेव समात्मा सुदुर्लभ जो सब समय ज्ञान से युक्त है और सर्वत्र बसते वासुदेव कृष्ण को देखता है वो ज्ञानी महात्मा सबसे श्रेष्ठ और दुर्लभ है। तो ये पहले बतलाया चतुर्विधा भजन्ते, चार प्रकार के लोग भजन करते हैं। कौन चार प्रकार के लोग? सुकृतिनो, जिनकी पूर्व जन्म की इस जन्म की कुछ सुकृति है वो लोग, दूसरे लोग नहीं, सुकृति होना चाहिए। और नहीं तो दुख आएगा ना। आर्थो जिज्ञासु, ज्ञानी और अर्थार्थ, ये चारों लोग भजन नहीं कर सकते। ऐसा कौन है जिसको अर्थ की लालसा नहीं है? कोई ऐसा हाथ उठा करके कहता है जी हमारी अर्थ की लालसा पूरी, अब हमको पैसा नहीं चाहिए। कोई कहेगा ये साधु संत कह सकते हैं, ये हमको नहीं है। यदि होगा तो हम लोग हाथ उठा देंगे, हमको जरूरत नहीं, दूसरे नहीं कहेंगे, उनको जरूरत है। और जितना मिलता जाएगा और लालसा उतना ही बढ़ती चली जाएगी। अर्थार्थी, यदि अर्थार्थी को पूर्व जन्म की सुकृति है तो वो भगवान का कुछ भजन कर सकता है। उदाहरण के लिए ध्रुव जी को अर्थ की लालसा थी, राज्य की लालसा थी, नारद जी मिल गए और उनकी कृपा से उन्होंने नारायण का भजन करके तपस्या करके उनको संतुष्ट किया, वो राज्य भी मिल गया और अंत में भक्ति भी मिल गई। ये अर्थार्थी किस कैसे? सुकृति का जोर नहीं होता तो नारद जी नहीं मिलते, इसलिए पूर्व जन्म में भक्ति उन्मुखी कुछ सुकृति थी, साधु संग हुआ होगा। और क्या हुआ होगा? जान में अनजान में किसी संतों की सेवा हो गई, जान अनजान में ठाकुर जी की कैसे सेवा हो गई? कैसी? जैसे कोई एक संत थे, वो भिक्षा मांगने जाते, भिक्षा मांग करके ठाकुर जी को अर्पित कर देते, जो कुछ मिल जाता है जो अर्पित कर देते, तो जिन जिन से लिया है उनकी सुकृति हो गई। जहां जहां से जो कुछ मिला वो ले आए और ठाकुर जी के सामने रख दिया, वो निर्गुण हो गया। और जिन लोगों ने उसमें सहायता की थी, दिया था, जो चावल दिए, आटा दिया, गेहूं दिया, जो कुछ दो चार पैसे दिए, उन सब लोगों की भक्ति उन्मुखी सुकृति, तो वो रोज जाते थे। कुछ दिनों के बाद में एक दिन उसको बुढ़िया मिली, उसके घर में जाकर के बोले जैसे राधे 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 या कुछ कहा उन्होंने, तो बुढ़िया बड़ी बिगड़ गई, दो चार गाली सुना दी, निकल जाओ हमारे घर, मत आना कभी यहाँ, कोई काम नहीं, धंधा नहीं, बस जब तक हो तब हाथ पसार करके आ जाते हैं। अरे काम तो कुछ करना, हमारे घर में नौकरी कर, तरस ऐसे गाली दी। वो बेचारे जब कुछ नहीं दिया, बहुत देर तक खड़े रहते चले जाते। दूसरे दिन फिर वही आया, देखते ही भड़क जाती। तीसरे दिन फिर गए, चौथे दिन फिर गए, वो भड़कती रही। और ये एक दिन उसको क्रोध आ गया बूढ़ी को, वो लिप रही थी घर पोतने से, पोतना जानते हैं ना, पोतने का काम, गोबर और मिट्टी इसमें कपड़े में, और उसे लिप पोत रही थी। उसने वो उठाया और मारा उसको जोर से, बचिया उसको लगी तो नहीं, पास में जाकर के गिरा, बड़े प्रेम से उठा लिया और हरे कृष्ण कहते हुए चल पड़ा। और जमुना जी पास ही थी, जमुना जी में मलमल करके उसे धोया, धो करके किसी भक्त से मांग करके थोड़ा सा घी मिल गया, उसमें मिला करके उसकी बत्ती कर करके ठाकुर जी से आरती कर। दूसरे दिन जब गया तो उसका देखा जी उसका चेहरा बदला हुआ, उस औरत एकदम बदल गया। आज बड़े प्रेम से उसे बुलाया, बैठाया, कल हमने आप बहुत ही अन्याय किया, आप हमारे लिए क्षमा दी। अरे कल तो हमको तुमने भिक्ष दी और उसी से ठाकुर जी को हमने आरती की, बड़ी गदगद हो गई, उसने कुछ और दिए, बदल गया उसका स्वभाव। ये कहते हैं सुकृति। इस जन्म में दूसरे जन्म में जरूर भगवान के तरफ में बढ़ेगी, साधु संग हो जाएगा, भक्ति के प्रति आदर होगा, आगे बढ़ जाएगा। इसको कहते हैं अज्ञान सुकृति, अज्ञात सुकृति। एक कबूतर था, पेड़ की डाल पर बैठा था, वहीं पर एक मंदिर था ठाकुर जी का, राधा कृष्ण का मंदिर या विष्णु का मंदिर, नारायण का मंदिर। एक डाल पर बड़े आराम के साथ में बैठा हुआ था, उसकी पत्नी भी दोनों थे, वहीं पर थे, दोनों मिलकर के बड़ी चहचहाट से अपने मिल रहे थे बड़े प्रेम के आनंद के साथ, और कहीं से हम लोग जैसा कोई बहेलिया बड़ा भारी क्रूवेल वहां आकर के और तीर से मारा और छाती में गया और लहू लुहान होकर के गिर पड़ा। छटपट करता हुआ बेहोशी की स्थिति में वो मंदिर की परिक्रमा कर लिया, जानबूझ करके नहीं कि छटपटाहट में। अब छटपट छटपट करता हुआ चेंचे करता हुआ मंदिर की परिक्रमा, जहां परिक्रमा से वो मर गया। अब इसकी अज्ञात सुकृति होकर के मंदिर परिक्रमा का फल हुआ, दूसरे जन्म में साधु संघ हुआ और भक्ति में बढ़कर के बहुत उन्नत होकर के चला। भगवान ने ऐसे ही दरवाजे खोल रखे हैं, ये जब चीजें नहीं होती तो हमारा कल्याण नहीं होता। इस तरह से कहते हैं वो सुकृति जिसको हो और ऐसा आर्त हो तब तो भक्ति हो सकेगा, नहीं तो भक्ति नहीं करेगा, तब तक हारे मैं दैया रे मरा रे मरा रे मरा रे जल गया ये करता रह जाएगा और चिंता में ऐसे करते हुए मर जाएगा। ये हुआ आर्त, अर्थार्थी। आर्त कौन है? एक गजराज था, गजराज समझते हैं ना, गजराज हाथियों का भी राजा। वो अपनी बहुत सी पत्नियों को लेकर और गर्मी के दिन में सुंदर एक स्वच्छ निर्मल और सुशीतल सरोवर था उसी में उतरा और अपने सूढ़ों में पानी लेकर के और अपनी हथनियों के ऊपर में पत्नियों के ऊपर में फुर करके छोड़ देता, अपने बच्चों पर छोटे छोटे बच्चे शिशु उन पर छोड़ देता। सैकड़ों की तादाद में वो सब थे, एक गजराज और हथनिया और उनके बच्चे बहुत से थे। क्रीड़ा कर रहा था बड़े आनंद से, केले के पेड़ चारों तरफ से एकदम पकड़ करके अपने मुख में देता था, बच्चों के मुख में देता था, अपनी पत्नी के मुख में देता और आनंद से फुहारा लेकर के अपने ऊपर छोड़ता उनके ऊपर में छोड़ता बड़े आनंद से। इतने में एक क्रोकोडाइल आया, मगर बहुत लंबा चौड़ा, उसने उसके पैर को पकड़ लिया। पैर को पकड़ लिया तो उसने छुड़ाने की चेष्टा की। अब उसके जो साथ में रहने वाले थे वो सभी लोग घबराए, सब लोगों ने मिलकर के उसे बचाने की चेष्टा की। 1000 वर्ष तक युद्ध चलता रहा, कभी वो ले जाए वहां तक फिर वहां से वो खींच ले जाए। पानी में मगर को बहुत जोर होता है, वो चाहता था कि किसी प्रकार से इसको खींचते हुए जमीन पर लाए, थल पर, हाथी का चेष्टा, और सभी मिलकर के उसको खींच रहे थे किंतु उसके पैने दांत यहां से वहां तक सारा मुखी दांत ऊपर नीचे सब ऐसे चिभाया और ऐसे खींचा बस नहीं चला। अंत में देखा कि इतने दिन इनके साथ में रह करके क्या ये तो मरे, हम लोग भी मरेंगे उनको छोड़ करके। उनकी जितनी गजरानियां थी और बच्चे तच्चे सब वहां से चले गए, अब अकेले रह गया। अब इतने दिन तक उसको जो खींच रहा था अब वो विवश हो गया, अब उसको आसानी से खींच करके गहरे पानी में ले गया। अब वो जब गहरे में पानी में गया और उसको खींच करके डुबाने लगा तो न जाने क्या उस पूर्व जन्म की सुकृति और उसने भगवान को हे गोविंद राकुशल, अब तो जीवन है, अब कोई मेरा सहारा नहीं, अब तो मैं मरा ही। बस एक कमल का फूल उठाया अपने सूंड से, उसे तोड़ करके और आंख बंद करके अपनी सारी चेष्टा छोड़ दी बचने की और अपने को बचाने की चेष्टा और ले करके ऐसे ज्यों ही दिया त्यों ही, प्रभु तो दूर नहीं थे पर साथ ही साथ आए और अपने हाथों से खींच करके इन दोनों को पकड़ करके जमीन पर ले आए और चक्र से ऐसा उसका मुख चीर दिया और उसका पैर निकाल लिया। वो तो जमीन चीर रहा था, चक्र काट रहा था, उसी समय उसमें से एक तेज निकला और प्रभु के चरणों में ही समा गया मगरमच्छ का। और जो हाथी था गजराज जब छूट गया तो हाथ जोड़ करके उनकी पाव स्तुति करने लगा। और इसे तो बचा ही, जीवन मरण के चक्र से बच गया और उसको गोलोक वैकुंठ की गति उन्होंने प्रभु ने दी। क्यों ऐसा हुआ, क्यों उसने समर्पण किया, मगर ही कौन था, अब पूर्व जन्म पर चलिए, ये कैसे सुकृति और कैसे क्या हुआ। एक राजा थे, उनका नाम याद है, इंद्रद्युम्न उनका राज नाम। अपनी आधी उम्र में 10-20 हजार जब उनकी उम्र हो गई, उस समय की उम्र बहुत लंबी, तो वो घर छोड़कर के वन में भजन करने के लिए गए। तो वहां पर भजन कर रहे हैं, एक दिन अगस्त आए, ये क्षत्रिय हैं, अगस्त जी तो सिद्ध महात्मा हैं। तो वो जब गए तो वो कुछ अपना जप तप कर रहा था, भगवान का ही जप कर रहा था। तो ये जब पहुंचे तो वहां पर खड़े हो गए, उसने उठ करके उनका आदर नहीं किया। वैष्णव को आदर करना, उठ करके खड़ा हो जाने चाहिए, सम्मान करना चाहिए, सम्मान नहीं किया। जैसे तू हाथी की तरह में बैठा रह गया, तुमको कोई ज्ञान नहीं है, क्षत्रिय कुल में जन्मा और ऋषियों को महात्माओं को तुम कुछ नहीं परवाह करता है, जाओ तुम हाथी हो जाओ। बस साथ ही साथ मनुष्य से वो हाथी के शरण में बदल गया। किंतु चूंकि जो भगवान का जप करता था और अगस्त ऋषि भक्त हैं, उनका दर्शन भी अमोघ है, अमोघ माने निष्फल नहीं जाएगा, और वो जो जप कर रहा था, ये दोनों उसकी आई और उसने कमल के फूल लेकर के भगवान के चरण, और जैसे ही आत्मसमर्पण करता है त्यों ही भगवान उसकी रक्षा करते हैं, इस जीवन से भी रक्षा करके, भव सागर से भी रक्षा करके, वैकुंठ शांति करके। और वो जो था, मगर वो कौन था, वो एक ऋषि था, ऋषि नहीं, मैंने कोई एक राजा वैसा ही था, गंधर्व, हुहु गंधर्व था, हुहु नाम का गंधर्व था। गंधर्व बड़े सुंदर होते हैं, तो वो किसी ऋषि को देख करके हंस देता, देवल ऋषि का पैर पकड़ लिया, जब पैर पकड़ लिया उन्होंने कहा छोड़ो छोड़ो, नहीं छोड़ा जा तू मगर हो जा। वो ऋषि भी साधारण नहीं थे, अब उनको पकड़ा, चरण की धूली जब पकड़ा, वो चरण पकड़ा, तो चरण पकड़ने का साधु संत का कुछ फल होना चाहिए कि ऐसे ही निष्फल हो जाएगा, चाहे जान बुझ कर करे चाहे नहीं करे। कोई आदमी जान करके पानी में गिरे और जान बुझ करके गिरे या नहीं जान करके, वो भीगेगा कि नहीं पानी से, वो तो भीगेगा, ये पानी का स्वभाव है। इसलिए संत लोग चाहे जिस रूप में है, उनका संपर्क और चरणों का स्पर्श करना उसके लिए सुकृति बन गया, इसलिए इनको भगवान की स्मृति अंत में हुई और भगवान के चरणों में हुई। इसलिए साधारण आदमी के लिए नहीं बदला गया, सुकृति थी पूर्व में। आर्थो अर्थार्थी, अच्छा जिज्ञासु, जिज्ञासु सबके लिए ये रहता है। अच्छा भाई इतना परिश्रम करता हूँ, पेट नहीं भरता है क्यों, इतना परिश्रम दिन भर करता हूँ, और देखो तो टाटा बिरला के लड़के मौ से रहते हैं और ऐसे ठाठ बाट से रहते हैं, मैं दिन भर परिश्रम करता हूँ पेट नहीं। अच्छा ये दुख क्यों आता है, क्यों दुख आता है, हम तो सुख के लिए काम करते हैं, क्यों आता है। अच्छा मैं पहले कहां था, अच्छा मैं इस जीवन के बाद में कहां जाऊंगा, सूरज उगता है, चंद्र उगते हैं, फिर अस्त हो जाते हैं, समय पर ऋतुएं बदलती हैं, ये कौन करता है। बुद्धिमान पुरुष होगा तो ये सब चिंतन करेगा और जानवर होगा तो नहीं करेगा। इसलिए जो भगवत भजन नहीं करते उनको सीधा साधा ज्ञानी नहीं ना, धर्मी नहीं ना, पशु भी समान। चतुष्पद, चतुष्पदों में भी कौन सा चतुष्पद, गोखर, गोखर किसको कहते हैं, चौपायों में भी खर, चार पैर वालों में भी खर माने गधा, जो दूसरों का मैल सब धोता रहता ऐसे,
जिसको सिंग भी और पूछ दोनों कटी हुई हो, ये मनुष्य ऐसा है। गधे जैसा कान भी नहीं उसका कटा हुआ, सिंग भी नहीं है और पूछ भी कटी हुई, ऐसा ये दो पैरों का ये जानवर, दो हाथ हैं और दो पैर, यदि भगवत वचन नहीं करता। ये सब यदि विवेक उत्पन्न न हो, ऐसी जिज्ञासा हृदय में नहीं उत्पन्न हो, तो वो मनुष्य कहने का अधिकारी नहीं है। इसलिए कहते हैं जिज्ञासा होती है। 60,000 ऋषि लोग की 84 कितने हजार ऋषि लोग, 88,000 ऋषि लोग, कलयुग आएगा, अभी आया नहीं था, दिन बड़े कठिन हो जाएंगे, भगवान का स्मरण नहीं कोई करेगा, स्त्रियों का सौंदर्य केस में केवल रहेगा, केस खुला रखेंगी या ऐसा करेंगी, उनके अंदर में सात्विक भाव नहीं रहेंगे, अपने आप सात्विक भोजन इत्यादि से होटल अपने आप लाल रहेंगे, नहीं रहेंगे तो उनको दूसरा चीज लगा करके लाल बनाना पड़ेगा। मनुष्यों में जितने धर्म के तत्व हैं सब नष्ट हो जाएंगे। पेट पालने के लिए धर्म भाषण करेंगे, कहेंगे मुझसे बढ़कर क्या कोई वक्ता नहीं है, जो जितना ही अधिक गाल बजाएगा उतना ही संत हो जाएगा। राजा लोग प्रजाओं का सुख नहीं देखेंगे, अपने सुख के लिए भोग विलास के लिए प्रजाओं का हत्या करेंगे, नष्ट करेंगे, सब तरह तरह के कर लगाएंगे, घर में रहना दुष्कर हो जाएगा, इतना टैक्स बढ़ा देंगे आप घर में रह नहीं सकेंगे। जयपुर का नरेश वहां पर देखा, जो मिलों में उनका राजभवन पड़ा था, टैक्स नहीं दे सके, उन्होंने कहा भाई अब हमको राजभवन की जरूरत नहीं है, उपास में एक सरोवर के किनारे एक छोटा सा अपना राजमहल बना दिया, बस इसको छोड़ दिया, क्योंकि मेंटेन नहीं कर सकते। ऐसे ही कुछ दिनों में ऐसा होगा, ये राजभवन इत्यादि अभी तो हम रह रहे हैं, कल युग जब बढ़ेगा ना नहीं रह सकते, मेंटेन नहीं कर सकते, जंगल में जाएंगे कहां रहेंगे, जंगल जंगल बनाने में भी टैक्स देना पड़ेगा, आज जंगल की कोई लकड़ी ले आएगी तो काट करके जेल दे देंगे, वहां के रक्षक ही भक्षक बने हैं, वो क्या करते हैं अपनी तो लकड़ी लेकर के बेचेंगे, और दूसरा गरीब आदमी वहां का पत्ता भी जरा ले आएगा ना तो नहीं लाने देंगे, कहेंगे जैसे इतना हमको पैसा देकर के ले जाओ। अभी वो चौकों में जहां जहां चौक है ना पुलिस लोग खड़े रहते हैं, दिल्ली में क्या दिल्ली सोना की खान है, आज पेपर में कहीं निकला, सचमुच में खान है, कैसे वहां पर कोई सिपाही खड़े हैं और हां पैसे किया और वहां से ड्राइवर ने ऐसे दे दिए, उन्होंने पॉकेट में रखा, उसको झट देख लेते हैं ये 10 का है या 5 का है, यदि 5 हुआ तो फेंक दिए, कम से कम 10 चाहिए। तो ऐसे ही कलयुग जाता बढ़ता चला जाएगा, इसलिए उन्होंने सोचा कि अब क्या करना चाहिए, भगवान की स्मृति नहीं रहेगी, लोग स्त्रियां अपने बच्चों को भी मार करके खाएंगी, पुरुष लोगों का कोई धर्म कर्म नहीं रह जाएगा, साधु संत भी साधु संत नहीं रहेंगे, केवल बेस का रह जाएंगे पेट पालने के लिए, जो गृहस्थों को नसीब नहीं ऐसा सुख होंगे, अभी भी हम देख रहे हैं जिन गृहस्थों को टीवी और ये पंखे और कूलर नहीं है, वो बड़े बड़ी अल्फाल बिल्डिंग में करोड़ों करोड़ों के अरबों खरबों के मालिक हैं, कोई त्याग नहीं, वैराग्य नहीं, कोई भजन नहीं, कुछ नहीं, और भी आगे ऐसे होंगे। इसलिए वो लोग सोचा जब क्या करना चाहिए, पितामह जी की आराधना की, उन्होंने कहा देखो ये चक्र छोड़ता हूं, जहां ये चक्र गिर जाए वहीं पर जाकर के तुम लोग भगवान की कुछ कथाओं को सुनो, बस चक्र फेंक दिया, वो जहां पर जाकर के गिरा उसी को कहते हैं नमीशारण्य, उसका निमिष, निमिष माने वो चक्र का ऊपर का भाग जहां पर गिर जाए, वहां पर गिरा और पाताल से एक धारा निकली, अभी भी वो धारा है, अभी वहां पर इस प्रकार से बना रखा है जो चक्र की भांति वो घूमता रहता है, उसी में लोग स्नान करते हैं नमीशारण्य में, पासी में गोमती नदी है, वहीं पर एकत्रित हुए और वहीं पर बाई चांस सुत गो लोभर्षण सुत गोस्वामी पहुंच गए और उनके पुराणों की कथा सुनाने लग गए, और वो चाह रहे थे जो भागवत हम सुनेंगे। इसके बाद में लोभर्षण के पुत्र जी उग्र सवासुत पीछे से आए और उनको उन्होंने भागवत सुनाया, तब वो शांत होकर के भगवान का भजन में लगते हैं। ये क्यों हुआ? सुकृति है भगवान का, पहले वो कुछ कुछ भजन करते थे इसलिए उनको स्मरण हुआ और उन्होंने भगवान की कथा श्रीमद् भागवत की कथा सुनी, जिसको सुनने से परीक्षित महाराज 7 दिन में वो लोग वैकुंठ चले गए। और ये लोग महीनों तक कितने कितने वर्षों तक सुने, इनका कुछ कल्याण नहीं होगा। क्यों हुआ? पूर्व जन्म की सुकृति, इस जन्म की सुकृति। और ज्ञानी, ज्ञानी माने क्या? ज्ञानी भी यदि पूर्व जन्म की सुकृति नहीं होगा तो भगवान का भजन नहीं करेगा। यह ज्ञान भी एक कालिमा है, एक मैल है। इस ज्ञान को छोड़ करके तब वो निर्मल होगा, तब वो जैसे अर्थार्थी का अर्थ की कामना और जिज्ञासु की संसारिक वस्तुओं की कामना, जिज्ञासा और आर्तों की, आर्त की जो भावना है, ये छोड़ करके तब भक्ति होगी। ऐसे नहीं एक आदमी सब समय आर्त है, उसी को शूद्र कहते हैं। इसलिए इन लोगों को ये नहीं, भगवान की कृपा से पूर्व जन्म की सुकृतनो अर्जुन, हे अर्जुन जिनकी पूर्व जन्मों की सुकृति, ऐसे लोग भगवान का भजन करेंगे। अब ये बतलाया किंतु अभी इन चारों की भक्ति अभी शुद्ध नहीं है। इनमें से ज्ञानी क्योंकि निष्काम होता है इसलिए श्रेष्ठ है, उसको संसार की कामना नहीं है। वो जानता है कि संसार क्या है, संसार में अभी हम परिश्रम कर रहे हैं, लाखों रुपए कमा रहे हैं कि 2 पैसे कमा रहे हैं, किंतु यहाँ का एक सुई धागा भी लेकर के कोई नहीं जाने वाला है। ये चीज को समझो, जाएगा अपना शरीर ले जाएगा, कुछ भी नहीं। संसार की कोई भी रत्ती भर भी, एक केस भी नहीं ले जाए, टूटा हुआ केस भी नहीं ले जाए, तो फिर किसके लिए ये पाप करें, किसके लिए ये क्या करें? इसलिए संसार असार है, दुख का कारण है, ऐसा समझ करके लोग भगवान का भजन करते हैं निष्काम होकर के। इनको कहते हैं किंतु अभी भक्ति नहीं ठीक है, अभी निष्काम भगवत अर्पित कर्म है, इसलिए ये सात्विक है। भक्ति होती है निर्गुण। निर्गुण माने क्या? नहीं, इसलिए भगवान को जो कर्म अर्पित किए जाते हैं वो निष्काम को होकर के भी किए जाएं तो इसको कहते हैं सात्विक कर्म। ये योग है, कर्म योग है। एक होता है कर्म, एक होता है कर्म योग, एक होता है अकर्म, एक होता है विकर्म, सभी एक नहीं है। जैसे विकर्म, विकर्म माने क्या? बुरे कर्म जो करता है, उसका फल भोगना पड़ेगा। अकर्म क्या? जो करना चाहिए उसको नहीं करता, ये अकर्म हुआ। और कर्मयोग किसको कहते हैं? जो वैदिक कर्म है उनको कर करके और भगवान को अर्पित करता है, ये सात्विक कर्म है। इससे चित्त शुद्धि होती है, भक्ति नहीं होगी। भक्ति होगी उसके बाद में साधु संग होगा तब होगा, नहीं तो निष्काम कर्म वाला कभी नहीं होगा। वह है ना, निष्कर्म अच्युत भाव वर्जितम नशोवते ज्ञानम अलम निरंजनम कुतः पुनः शाश्वत अभद्रम ईश्वरे न चार्पितम कर्म जदप अकार। निष्काम कर्म भी है किंतु भगवान को अर्पित नहीं किया गया तो नरक में ले जाएगा। जब निष्काम कर्म ही शोभा नहीं पाता तो जो कर्म भगवान को नहीं अर्पित, जो सब समय संसार में फंसाने वाले कर्म है, इनसे कैसे हमारा कल्याण होगा? इसलिए कल्याण नहीं होगा। इसलिए कहते हैं जैसे ये निष्काम भगवत अर्पित जो कर्म है, जिसको बड़े बड़े लोग करते हैं, गीता में भी उपदेश दिया गया कर्मों का भगवान को अर्पण। नारायण समर्पित तत् तत् नारायण, नारायण के चरण में काम करो, खाओ पियो सो जो कुछ भी है, यज्ञ करो, जो कुछ भी करते हो खाओ पियो सब कुछ भगवान को अर्पण करो। किंतु ये भी कर्म है, ये कर्म योग है, यही कर्म से योग हुआ भगवान की भक्ति का भी, किंतु सात्विक है, इसको भक्ति अभी नहीं कहेंगे। यदि यही कर्म होगा, जब साधु संग का संग होगा, चित्त का मैल उतर जाएगा और तब शुद्धा भक्ति उत्तमा भक्ति जो जिसकी कल मैंने व्याख्या की थी तब आएगा। इसलिए इन कर्मों से भी नहीं होगा। इसलिए भक्ति इससे और ऊपर है, इसलिए बतला रहे हैं। इसके ऊपर में क्या है, ज्ञानी भक्त इनमें सर्वोत्तम है, क्योंकि उन निष्काम होता है। ज्ञानी किसको कहते हैं उसको समझो, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम लभते पराम। ब्रह्मभूत प्रसन्न, ब्रह्मभूत जो है वो ऐसा है कोई भी संपत्ति की लालसा नहीं करता या किसी चीज की लालसा नहीं करता और कोई चीज नष्ट हो जाने पर उसके लिए शोक नहीं करता। जन्म मरण व्याधि आदि जय पराजय में वो दुखी नहीं होता न सुखी होता है और सबके प्रति समभाव रहता है, समदर्शी होता है। इसको कहते हैं ज्ञानी। यही ज्ञान यदि भगवान के साथ में योग युक्त कर दे अर्थात इस ज्ञान को अर्पण करके भक्ति के साथ में मिश्रण कर दे थोड़ा सा, उसके साथ साथ में भगवान का भी थोड़ा सा भजन करने लगे तो क्या होगा, साधुओं का संग होकर के ये भक्ति पराभक्ति लभे, पराभक्ति हो जाएगी। पराभक्ति माने प्रेमा भक्ति। इसलिए आप कहते हैं भक्ति की स्टेज कुछ है, पहले होगा यहां तक तो क्रम से आया ना, कैसे कर्म मार्ग से ज्ञान मार्ग से योग मार्ग से निकल करके भक्ति में आएंगे। ज्ञान